आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड।
आइए करीम भाई आइए।
आ तो गए हैं मगर जो तुम करने जा रहे हो मस्तान, क्या वो सब हो पाएगा? तुम्हें तो पता है हमारे आदमियों को उन चिलियन ने कितना मार खिला कर भेजा था, भुस भर दिया था उनकी खाल में।
उसी का बदला लेने के लिए तो ये मीटिंग रखी है। आप देखते रहो, जीना आपा ने जो तिकड़म मिठाई है वो जरूर रंग लाएगी। पहली बार मैं खुद को छोटा और जीना आपा को इस दुनिया में बड़ा समझ रहा हूँ।
लो वो आ गई आपकी जीना आपा भी।
सलाम अलैकुम आपा।
वालेकुम सलाम मस्तान। और करीम क्या हाल है तुम्हारे?
बस आपकी ही मेहरबानी है आपा।
दाऊद को साथ नहीं ले आपा?
सब्र रखो मस्तान, वो आ रहा है। जैसा कहा था ना, देखना वैसा ही होगा।
मगर मुझे क्यों डर लग रहा है? कहीं यहाँ मेरे घर में जंग ना छिड़ जाए, कभी पठान और इब्राहिम भाई आपस में यही ना मर जाएं।
मैंने सबको सख्ती से मना कर दिया है कि मीटिंग मेल मिलाप के लिए है, कोई घर में हथियार लेकर नहीं आएगा।
वाह आपा, आप तो कमाल का दिमाग चला रही हैं। मगर कोई अंदर ले आए
तो क्या? जीना बाई के सामने कोई गोली चलाए, किसके पिछवाड़े में इतना दम है? जान से हाथ धोएगा क्या?
ये सारा अंडरवर्ल्ड आज एक छत के नीचे जमा हो रहा था। जगह थी हाजी मस्तान की बैतूल सुरूर कोठी, जो पेडर रोड पर थी। साल था 1980, जब मुंबई के गिरोह का समझौता कराने सारे गैंग्स को जेनाबाई लेकर पहुंची थी, सिर्फ इसलिए ताकि हाजी मस्तान के साथ ये सारे गैंग आ जाएं और वो इतना ताकतवर बन जाए जिससे गुजरात से आए चिलिया लोगों के कब्जे से जमीन छुड़ाई जा सके।
सलाम अलैकुम मस्तान भाई।
वालेकुम अस्सलाम दाऊ। साबिर नहीं आया?
पीछे आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने लगे थे। लीजिए जना मासी, आपका फरमा बरदार आ गया, जान हाजिर है।
तू तो जान है मेरी, तो मैं तेरी जान क्यों लूंगी छोकरे। बस पठान आ जाए तो सारा झंझट आज यहीं खत्म हो जाए।
इतना वक्त लगा दिया, पता नहीं कहाँ रह गए ये पठान, अब तक आए क्यों नहीं?
मस्तान की बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी नजर सिर्फ बेलासिस रोड पर एक बड़ी जमीन पर थी। वो बस यही सोच रहा था कि जल्दी से सब गैंग आए और उसका साथ देने के लिए राजी हो जाएं। मस्तान चेन्नई का रहने वाला था और 1934 में अपने पिता के साथ मुंबई आया था। उसने एक मैकेनिक के तौर पर काम शुरू किया। 1944 में मुंबई के बंदरगाह पर कुली बनने से पहले वो साइकिल मरम्मत करने का काम करता था। उसके बाद सोने चांदी इलेक्ट्रॉनिक के सामान की तस्करी से करीम लाला और वर्दराजन मुदलियार के साथ मिलकर करोड़ों रुपए कमाए और मुंबई के सबसे मजबूत गिरोह में से एक गिरोह बनाकर खड़ा कर दिया। उसका बंगला, उसकी मर्सिडीज और अकूत संपत्ति सब बरसों से किए जा रहे अवैध धंधों की वजह से थी। मगर बार बार जेल जाने के बाद मंत्रियों नेताओं के कहने पर वो ये धंधा बंद कर रहा था और शराफत का चोला पहनकर नंबर एक के धंधे में आ रहा था, जिसमें अब उसकी मदद जेनाबाई कर रही थी।
लो आ गए पठान भी, तो चलो आप बात शुरू की जाए।
देखो भाइयों, हम सब अपने अपने इलाके के डॉन हैं, मगर हम आपस में ही एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाते रहते हैं और इस चक्कर में दूसरे लोग मलाई मार रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब मुसलमान हैं, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं? दूसरे लोगों को अपने ऊपर क्यों हावी कर रहे हैं?
मैं तो इतना जानती हूँ, अगर तुम आपस में लड़ोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा, दूसरे मजा मारेंगे। आओ चलो, कसम खाओ कि आज के बाद एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे और कोई तीसरा बोले तो उसे छोड़ेंगे नहीं।
कसमें खा ली गईं, सब एक हो गए और जेनाबाई ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ये सब आसान भी नहीं था, मगर अंडरवर्ल्ड की इस रानी ने कर दिखाया। बेलासिस रोड पर जो जमीन चिलिया लोगों के कब्जे में थी वो छुड़ा ली गई, सबको खदेड़ दिया गया। जेनाबाई का सिक्का पूरे अंडरवर्ल्ड पर चला। जेनाबाई का बड़ा बेटा भी उसके नक्शे कदम पर चलने लगा और एक गैंगवॉर में उसे गोली मार दी गई। इस सदमे ने ही जेनाबाई को अंडरवर्ल्ड से निकालकर मजहब के रास्ते पर डाल दिया था।
जैना मासी, कमाल भाई के हथियारों का पता चल गया है, बताइए क्या करना है।
मौत और जिंदगी खुदा देता है, हम नहीं। मेरे बेटे के नसीब में शायद इतनी ही जिंदगी थी। मानती हूँ उन्होंने मेरे बेटे का कत्ल किया, अब इस बात का इंसाफ खुदा ही करेगा, मैं नहीं। मैंने उन कातिलों को माफ़ किया, वो चाहे जा रहे हैं, मुझे किसी से बदला नहीं लेना। अब मेरी ज़िंदगी जितनी बची है उसे अल्लाह की राह में ही खर्च करना चाहती हूँ।
बेटे की मौत से जैनाबाई निढाल हो गई थी, तबीयत खराब रहने लगी थी। मगर ये जैनाबाई थी जिसकी शुरुआत आज़ादी की जंग से हुई थी और आखिर भी देश की भलाई में गुजरा। 20वीं सदी में वो डोंगरी में आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हुई और 1947 में जब देश बट गया तो उसका शौहर 5 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चला गया। मगर जैनाबाई ने हिंदुस्तान का साथ नहीं छोड़ा और जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, दंगे हुए, मगर जैनाबाई ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और शांति के साथ मार्च निकालने लगी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े थे, दंगा हुआ। 1 महीने तक यही सब चलता रहा। वो हिंदू मुस्लिम एकता की अपील करती रही। इन दंगों से उन्हें बहुत दुख पहुंचा और तबीयत बिगड़ती गई।
मेरा दिमाग फटा जा रहा है, बहुत दर्द है। या अल्लाह रहम कर मुझ पर।
कुछ नहीं होगा आपको, हम अस्पताल जा रहे हैं।
नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी और कोई मुझे अस्पताल लेकर ना जाए।
अगर आप अस्पताल नहीं जाएंगी तो हालत और बिगड़ जाएगी, फिर कैसे ठीक होंगी?
शायद मेरा वक्त पूरा हो गया है। मेरा बेटा कमाल मुझे बुला रहा है, मुझे माफ़ करना।
ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह के वास्ते ऐसा ना बोले, आप ठीक हो जाएंगी।
और फिर जैनाबाई की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें होश ही नहीं रहा। अस्पताल ले गए तो पता चला ब्रेन हेमरेज हुआ है। जब होश आया तो वो बड़बड़ाने लगी। उनकी जिद पर घर ले आए जहां वो कोमा में चली गईं। और साल 1993 में ही वो घड़ी आ गई जब उन्होंने आखिरी सांस ली। अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली ये रानी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस पॉडकास्ट के किरदारों को आवाज दी है कात्यायनी उप्रेती, फैजान खान, फ्रैंक जोसेफ, खालिद बेग और स्वस्तिका त्रिपाठी ने। अब अपने दोस्त अक्षय शुक्ला को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए नवभारत गोल्ड। नमस्कार।
इस तरह के और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इंफरटेनमेंट सर्विस नवभारत गोल्ड पर लॉगिन कीजिए। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारत गोल्ड.com पर।